ओम शांति। और अभी हमारे बीच में दीदी जी हैं जिनके दर्शन के लिए लगती हैं मंदिरों में लंबी कतार, जिनकी महिमा करते दिल भर जाती है बार बार। कमल आसन पर सुशोभित है वह देवी आप, जिनकी दुआओं से भर जाती है झोली हर बार, झोली हर बार। ऐसी देवी स्वरूपा परम आदरणीय सुदेश दीदी जी हमारे बीच हैं, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और आपको नमन करते हैं। आदरणीय दीदी, जहां हमारी भारतीय संस्कृति संस्कृत का भरपूर उपयोग किया गया है वह देश है वेस्ट जर्मन, जहां आप 25 वर्षों से सेवाएं प्रदान कर रही हैं। आपने 25 वर्ष लंदन में भी अपनी सेवाएं दी हैं। 50 वर्ष हो गए दीदी को विदेश में सेवाएं देते। यूरोप सेवा केंद्र की आप डायरेक्टर और कुशल संचालन कर रही हैं और आप एक कुशल वक्ता हैं। आपके व्यक्तित्व में सरलता, सौम्यता, निरहंकारिता तो है ही, लेकिन नजरिया बहुत साफ है। कभी भी किसी भी स्थिति परिस्थिति में आपने उलझन घबराहट फील नहीं की, बल्कि सफलता प्राप्त की। नेगेटिविटी आपके पास दूर दूर में भी नहीं, इसलिए विदेश में रहते स्वदेश वाले भी आपको याद करते रहते हैं और आपका नाम भी है सुदेश दीदी, जिनको यज्ञ में रहते 65 वर्ष हो गए अपनी सेवाएं प्रदान करते। और भी साथ में आपने साकार मात पिता से अलौकिक जन्म और पालना भी ली है। लगभग 100 से भी अधिक कंट्री में आपने अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। दीदी के लिए कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूं। कौन आया है कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तरानों में खनक जाग उठी। किसके आने की खबर लेकर आई ये हवाएं, रूह खिलने लगी और सांसों में महक जाग उठी। तो अभी हम आदरणीय दीदी जी से सुनेंगे माया से विकर्मा जीत स्थिति। आदरणीय दीदी जी,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं तो सबसे पहली बात, पहला मंत्र ओम शांति का पक्का करते हैं। और जितना जितना हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं, पिता परमात्मा के साथ संबंध जोड़ते हैं, बुद्धि दिव्य बनती जाती है। और बाबा ने कहा कि तुम बच्चे विशेष आत्मा इसलिए बन जाते हो क्योंकि दुनिया में जिसको पाना असंभव समझा जाता, नेति नेति कह करके छोड़ दिया जाता, उस पिता परमात्मा को आपने पहचान लिया, पा लिया, अपना बना लिया। और पिता ने अपने कल पहले वाले बच्चों को अपना कर, ये कहें एडॉप्ट करके, दिव्य बुद्धि का वरदान दिया तो न केवल परमपिता परमात्मा की पहचान हुई, माया की भी पहचान हो गई। पहले माया माँ की गोद में पलते थे, माया माँ के रंग बिरंगे रूप में अपने आप को आनंदित समझते थे। अभी जब दिव्य बुद्धि तीसरा नेत्र मिला तो जितना परमात्मा को पहचाना उतना उतना माया को परखने की शक्ति आ गई और समझ में आ गया कि बाबा ये नहीं कहता रावण माया। बाबा हमेशा कहते हैं माया रावण, पहले माया का नाम आता है पीछे रावण का नाम आता है। तो रावण और माया क्या अंतर है, माया क्या है? भक्ति वाले भी कहते हैं माया का छाया परछाया अथवा माया भ्रम है, धोखा है, अज्ञानता है। परंतु अभी समझ में आता है कि जब हम ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध का अनुभव कर लेते हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, परमात्मा के साथ संबंध जुटता है, तो अंधकार और रोशनी की पहचान आती है। माया गुप्त रूप है अवगुणों का। माया सूक्ष्म रूप में हमारी बुद्धि पर परछाया डाल देती है अथवा ग्रहचारी ले आती है। अवगुण अंदर ही अंदर पलने लगते हैं, विकार अलग चीज है और माया अवगुण अलग चीज है। सूक्ष्म रूप में अवगुण अंदर अंदर ही अंदर वृद्धि को पा रहे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि हम उसको ऐसा ही विकार समझ करके अथवा कोई पाप समझ करके छोड़े। वो स्वभाव और संस्कार में आ जाता है। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, विरोध, परमत, ये इसको कोई विकार की तरह विकारी कर्म समझें, नहीं कहेंगे मेरा स्वभाव है, परंतु ये ऐसे ही है कि मन की वृत्ति को तमोगुणी बना देते, दृष्टि को भी दोष दृष्टि वाला बना देते। हमको मालूम नहीं पड़ रहा है कि मुझे माया का प्रभाव पहले ही पहले संशय बुद्धि में संशय आना शुरू होता है दूसरों के प्रति। परमात्मा के प्रति निश्चय है पर दूसरों के प्रति दृष्टि में दोष दृष्टि, मन में पर चिंतन और कानों में कान रस परमत। इसको माया नहीं समझते, इसको समझते समाचार मिला, दूसरे के बारे में हमको पता चला इनका स्वभाव कैसा है। तो कानों में बात आते ही माया पर पंच जिसको बाबा बोलते हैं, पर मत बोलते हैं, वो कानों से आती है, कानों से घुसती है। इन ज्ञान इंद्रियों में से अज्ञान कैसे भरना शुरू कर देती है। कोई बात कानों में पड़ी, कहानी सुनी किसी की, वो कान सिर्फ अपने तक नहीं रखते, फिर वो तीन दोस्त बनकर के अच्छा काम करते हैं, मायावी काम करते हैं। कान ने सुना तो दृष्टि वैसे ही बन गई जो दूसरे ने सुनाया, वृत्ति भी वैसी बन गई उस आत्मा के प्रति। मैंने सुना नहीं है, मैंने देखा नहीं है, मैंने अनुभव भी नहीं किया है, पर किसी दूसरे के मुख से मैंने सुना तो फौरन मेरी वृत्ति दोष दृष्टि वाली हो गई, और दोष दृष्टि वाली हो गई तो दोष देखते देखते मन दूषित हो गया, और मुख पर भी वो दोष वर्णन करने में आ जाता है। तो तीनों दोस्त मिलकर के काम करते हैं, कान, आंख और जबान। अब हमको ये पता भी नहीं चलता कि ये माया के कंपनी में हम हैं, ज्वाइन कर लिया। तो बाबा कहते हैं बच्चे पर मत, धोखा देने वाली है। पर चिंतन पतन की जड़ है, माया गिराती है, पतन उतरती कला और पतित बनाने वाला है। और फिर जितना जितना आत्मा पर चिंतन में व्यर्थ चिंतन करना शुरू कर देते हैं, इसको कोई विकार नहीं समझते, और बाबा कहते हैं व्यर्थ चिंतन भी पाप है, विकारों को पाप समझते हैं, काम विकार को पाप समझेंगे, क्रोध को कहेंगे ये तो मेरा स्वभाव है, ऊंचा बोलना मेरा स्वभाव है, किसी को करेक्ट करना ये तो मेरा फर्ज है ना, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी हमारी बुद्धि अपने ही अवगुण को जैसे अंदर ही अंदर, वो चाहे सब्जी में कीड़ा लग जावे और चाहे अनाज में लग जावे, वो अंदर ही अंदर छिप के रहता है। गेहूं को कीड़ा लग जावे, गेहूं खाली खोखला हो जाता है, गेहूं नहीं रहता। लकड़ी को दीमक लग जावे, खाली खोखला कर देगी। इसी प्रकार से क्या है कि बुद्धि में वो दिव्यता नहीं रहती है, और फिर जब दिव्यता नहीं है, दिव्य दृष्टि नहीं है, स्वचिंतन के बदले पर चिंतन होना शुरू हो जाता है, चित्त मैला हो जाता है, हृदय की शुद्धि समाप्त हो जाती है। इसीलिए बाबा ने आज भी कहा कि माया का गला काटना है, उसके लिए बाबा ने हथियार दिया है। आज की मुरली में कौन सी बात बताई? स्वदर्शन चक्र, परदर्शन से पर आत्मा गिरावट में आती है, माया क्या अथवा बाकी विकार भी काम करने लगते हैं। इसलिए आत्मिक स्मृति, स्वदर्शन, अपना दर्शन नित्य करते रहें, अपने आप की स्थिति को चेक करते रहें। बाबा कहते हैं जब स्वयं को चेक करते हैं तो चेंज होती है, दूसरे को चेक करेंगे तो लापरवाही का चश्मा आ जाता है, अपना अवगुण अवगुण नहीं दिखाई देता। तो स्वदर्शन, प्रभु दर्शन, सृष्टि चक्र का दर्शन, जब ज्ञान मिलता है, लाइट मिली, तो पर चिंतन पर दर्शन के बजाय स्वदर्शन, आत्मिक दर्शन में मैं कौन हूं, मैं किसकी संतान हूं, मैं कहां का रहने वाला हूं, क्या मेरा घर है, बाबा मुझे क्या बना रहे हैं, मेरा भविष्य कैसा है, तो वो स्वदर्शन से अपनी दिव्यता की शक्ति बढ़ती रहती है। जैसे लाइट आई तो अंधेरा खत्म होता जाता है, लाइट फाइट नहीं करती अंधेरे से, अंधेरा कोई डंडे से नहीं भगाया जाता, लाइट जगी अंधेरा कहाँ गया। तो दिव्यता का प्रभाव जब ज्ञान बुद्धि में है, लाइट है, तो अंधेरा नहीं रहता। माया वास्तव में कुछ है नहीं, पर माया को हम ही जन्म देते हैं केयरलेसनेस से, अथवा कभी अभिमान से, कभी किसी ने अपमान कर दिया। ईश्वरीय बात में निश्चय होते मनोकामना पूर्ण नहीं हुई, संशय आना शुरू हो गया। तो ये माया सूक्ष्म रूप अथवा गुप्त रूप है, और रावण जो है वो फिर प्रत्यक्ष रूप है, फोर्स वाला रूप है, विकार। वो मन की इच्छा पूरी नहीं हुई तो आत्मा जो है या तो दूसरों को दोष देगी या फिर परमात्मा में भी संशय करने लग जाती है। तो बाबा कहते हैं ये समझ चाहिए, काम विकार नरक का द्वार है, वो कामना से शुरू होता है, इच्छा से शुरू होता है जो अच्छा नहीं बनने देती। जब वो फोर्स वाला रूप हो जाता है, अवगुण फोर्स का रूप ले लेता है, आकर्षण किसी भी चीज में, देह का संबंध, वैभव, वस्तु का आकर्षण, उसको विकार नहीं कहते, परंतु वास्तव में वो द्वार है विकारों के अंदर आने का, जिसको कहेंगे माया मां विकारों का दरबार खोल के बैठ जाती है, अनेक बातों को जन्म देती है। इसलिए माया जीत जगत जीत, परंतु वो खाली मन से समझने की बात नहीं, कर्म से परिवर्तन होता है, संस्कार कर्म से बनता है। तो जितना जितना हमको अपने अंदर हृदय की शुद्धि, आत्मिक स्थिति में स्थित है, परमात्मा के साथ संबंध है, तो परमात्म शक्ति से फिर विकारों की भी परख आती है, समझ में आता है कि मैं राम दुख के राज में हूं या सुख की दुनिया में हूं। पहले बाबा कहते थे तुम विकारों में गोते खाते रहते थे, और इतनी आदत पड़ गई थी जो जैसे कोई गंदगी का कीड़ा गंदगी को बार बार उसमें जाएगा, वो संस्कार स्वभाव ऐसा हो गया था कि बार बार विकारी जीवन, उसको विकारी जीवन नहीं समझा, उसको ग्रस्त धर्म समझा, बुद्धि भ्रष्ट हुई तो अधर्म को धर्म समझ लिया, सत्य को असत्य और असत्य को सत्य मानने लगे। इसीलिए कहते हैं झूठी माया, माया सच को झूठ बना देती और झूठ को सच बना देती। इसलिए बुद्धि का योग परमात्मा से जितना जितना जुटे आत्मिक बल बढ़े, और जितना जितना श्री मत पर निश्चय बुद्धि है तो श्री मत पर चलेगा, मन मत नहीं, न पर मत न मन मत न शास्त्र मत किसी और की मत नहीं श्री मत जो श्रेष्ठ बनाती है।
अपने सुकर्मों के बलकार ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो।
तो सेल्फ रियलाइजेशन से गॉड रियलाइजेशन आती है। रियलाइजेशन रियलिटी का अनुभव कराती है। वो कब? जब हमारी बुद्धि दिव्य बुद्धि बनती है तो हम अपने अवगुण को भी साक्षी होकर के देखते हैं, बाबा को साथी बनाकर। अपना डॉक्टर बाबा ने कहा तुम अपने आप जैसे बाबा दवाई देते हैं रोग को खत्म करने की, निरोगी बनाने की। तो जब बुद्धि दिव्य बन गई तो माया को भी परख सकते, ग्रामण को भी परख सकते, क्योंकि बीज विकारों का माया है, अज्ञानता है, इच्छाएं हैं, इन्फ्लुएंस है, आकर्षण है, किसी भी प्रकार का की वृत्ति में लोभ वृत्ति, अटैचमेंट की वृत्ति। तो वृत्ति दृष्टि बदल जाती है जब हमारा संबंध पिता परमात्मा से जुड़ता है। तो मानसालिक सा सिर्फ शरीर द्वारा, कर्म इंद्रियों द्वारा ही श्रेष्ठ कर्म नहीं होते, मनसा द्वारा श्रेष्ठ कर्म शुरू होते हैं। कर्म इंद्रियां शुद्ध भी तब होती हैं जब हम मन से जो कार्य करते हैं। इसलिए बाबा मूल मंत्र देते हैं, मन मना भव, तो मन मत भी नहीं होगी। मन मना भाव के मंत्र से जो बाबा की मत है, मत मैंने दिव्य बुद्धि, मत मैंने डायरेक्शन, तो परमत का प्रभाव खत्म होता है। बुद्धि में पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनती है, परखने की शक्ति बढ़ती है। तो हम अपने मन बुद्धि और संस्कार तीनों को एक लेवल पर लेके आते हैं। संस्कार पुराने बदलेंगे तब कर्म से बिगड़े हैं ना, तो कर्म करेंगे तो सुधरेंगे ना। सीढ़ी एक ही है, लिफ्ट एक ही है, चढ़ने की भी वही है, उतरने की भी वही है, सीढ़ी वही है। पर पहले सत्व प्रधान से सत्व रजो तमो तमो प्रधान बने, सृष्टि चक्र में आते बुद्धि मलिन होती गई, भ्रष्ट होती गई, रॉन्ग को राइट समझा, राइट को रॉन्ग समझने लगे। तो बाबा सत्य ज्ञान दे करके बुद्धि का ताला खोलते हैं, निश्चय बुद्धि बनाते हैं श्री मत के आधार से। तो जितना जितना स्वचिंतन के साथ साथ, स्वदर्शन चक्र के साथ साथ प्रभु दर्शन करते हैं, तो माया को प्रभु को साथी बनाकर साक्षियों करके देखते हैं। जैसे दूसरे की परख, किसी की कमी हमको फौरन महसूस होती है और निर्णय शक्ति भी बुद्धि में आ जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं कर रहा है, इनको ऐसे करना चाहिए। साक्षी होकर के बाबा को साथी बनाकर देखते हैं तो अपनी बुद्धि अपने कर्म को चेक करती है, जिसको बाबा ने कहा कि अपना चार्ट रखो अपनी प्रोग्रेस का, श्रेष्ठ कर्म कितना किया, श्रेष्ठ संकल्प कितना किया, सेवा किस भाव से किस वृत्ति से की, सुख कितनों को दिया, देह भान का त्याग कितना किया। तो जो पहले माया ने विकारों का घर यह बना दिया था, फिर बाबा की शक्ति ने गुण ज्ञान गुण और शक्तियों का भंडार भरा। ज्ञान ज्ञान जब बुद्धि में आता है, ज्ञान किस लिए मिल रहा है? माया है अज्ञान, और परमात्मा ज्ञान के सागर, ज्ञान के सूर्य ज्ञान देते हैं। तो अंधकार और ज्ञान का पता चलता है तो हम अपने ही साक्षी होकर के अपने ही कर्म के बाबा को साथी बना करके विकारी कर्म पर कंट्रोल, व्यर्थ चिंतन को स्वचिंतन में परिवर्तन, शुभ चिंतन में परिवर्तन। तो जब मन शुद्ध है, वृत्ति शुद्ध है, तो कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगा। वाणी मधुर तब मधुर होगी, कल्याणकारी होगी। तो क्रोध अशांति ले आता है, और आत्मिक स्मृति परमात्म संबंध शांति और सुख देते हैं। क्रोध अशांत करता है, मोह दुखी करता है, लोभ कंगाल बना देता है, भ्रष्टाचारी बना देता है, और अहंकार तो चकनाचूर कर देता है, अपवित्र बनाता है, वृत्ति दृष्टि अपवित्र होती है, काम विकार रोगी बनाता है, उम्र छोटी होती जाती है एवरेज। सतयुग में पवित्रता की शक्ति, ये विकार और फिर निर्विकारी, पांच विकार और पांच ईश्वरीय शक्तियां, इन दोनों का जब कंट्रास्ट पता चलता है तो माया रावण का विनाश होता है। दस सिर माया के, रावण के और माया के, ये फिर बाबा हम बच्चों के अंदर ईश्वरीय शक्तियां, ज्ञान की शक्ति, शांति की शक्ति, प्रभु प्रेम, पवित्र प्रेम की शक्ति, पवित्रता की शक्ति और सत्यता की शक्ति, सत्य चित्त में चला गया, आनंद ही आनंद है, संतुष्ट हैं, शक्तिशाली हैं, ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति आ जाती है। तो ईश्वरीय शक्तियां और साथ साथ जो संगम युग पर ईश्वरीय शक्तियां हमको संगम युग पर वर्षे के रूप में मिलती हैं। बाबा के हम बच्चे हैं, बाबा कहते हैं तुम सर्व शक्तिवान के बच्चे हो, तुम अपनी निश्चय के बल से कौन हो, हम सर्व शक्तिवान की संतान है, कौन है हम, विश्व कल्याणकारी बाप के हम बच्चे हैं। कैसा मेरा स्वरूप है, दिव्य सुंदर बिंदु स्वरूप है, उसमें ईश्वरीय शक्तियां सारी समाई है। चैतन्य चमकता सितारा हूं, भाग्यवान आत्मा हूं, तो अपनी जितना जितना हम अपनी दिव्यता को पहचानते जाते हैं, नजर बदल जाती है, उसी दृष्टि से दूसरे को देखते हैं। जितना जितना देह के भान में आते हैं, हमारी बुद्धि पर हमारे ही विकारों का प्रभाव अथवा अवगुणों का प्रभाव पड़ता है, तो दूसरे को भी उसी दृष्टि से देखते हैं। जैसे बाबा ने कहा, फिर अपनी भूल करेंगे भी सही, कहेंगे बाकी भी तो करते हैं, बड़े बड़े महारथी भी तो यही करते हैं, रियलाइजेशन नहीं होती, पर बाबा साथ में है तो रियलाइजेशन है और समझ है। तो ईश्वरीय शक्तियां और साथ साथ संगम युग पर विकारों को जीतने की अथवा पहले अवगुणों को जीतने की अष्ट शक्तियां, समेटने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, संभालने की शक्ति, ईश्वरीय शक्तियां हमको संगम पर जो मिलती हैं, वो हमारे पास नेचुरली सतयुग में संस्कार बन जाता है। उस शक्ति के आधार पर जो ब्राह्मणों की शक्तियां हैं, वो देवताओं की शक्तियां नहीं है। देवताओं के पास कोई माया किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं है जिसमें कि उनको विस्तार को सार में समेटना पड़े, अंतर्मुखी बनना पड़े, क्या सहन करना पड़े। हर एक आत्मा हर एक के प्रति शुभ भावना शुभ कामना वाली है। तो पर ये सब शक्तियां, सहयोग देने की शक्ति, ये ब्राह्मणों को की शक्ति मिलती है। तो जब हमारे पास ये ईश्वरीय शक्तियां और ब्राह्मणों की शक्तियां जन्म सिद्ध अधिकार होता है, तो हमारे कर्म में सुधार मिलता है, कर्म पुराना खत्म होता है, योग से विकर्म खत्म होते हैं, श्रेष्ठ कर्म से नए संस्कार बनते हैं। परंतु वो दोनों शक्तियों को यूज करते हैं तब, ईश्वरीय शक्तियां और संगम युग पर ये आठ शक्ति, विड्रॉ करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की अथवा परखने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, ये सतयुग में काम नहीं आती हैं, पर संगम युग पर ये काम आती हैं। अब इन शक्तियों को जितना जितना बढ़ाते जाते हैं अवगुण खत्म होते जाते हैं, और ईश्वरीय शक्तियों को बढ़ाते हैं वो कर्म में लाते हैं, तो योग बल से कर्म करते हैं विकर्म विनाश होते हैं। श्रेष्ठ कर्म भी होता है और विकर्म भी विनाश होते हैं। बाबा ने कहा ज्ञान से भी योग की शक्ति पावरफुल है, तो ज्ञान को योग बनाओ। ज्ञान को, ज्ञान क्या है? मैं आत्मा हूं। किसकी संतान हूं? परमात्मा की संतान हूं। तो आत्मा का परमात्मा से संबंध का नाम ही तो योग है, और संबंध से जो गुण होते हैं एक दूसरे के वो ऑटोमेटिकली अपने में समाते हैं। जैसे हम फ्रेंडशिप में, दो सखियां हैं आपस की फ्रेंडशिप है, दोस्त हैं, उनका एक जैसा स्वभाव मिलता है, क्वालिटी क्वालिटी को खींचती है, तो ईश्वरीय शक्ति आत्मिक शक्ति को जागृत करती है, रूहानियत रूहानियत को जागृत करती है। परमात्मा ज्ञान का सागर है, आत्मा का अंधकार मिटता है, तो ज्ञान को योग बनाते हैं जब, तो उससे बुद्धि दिव्य बनती है, ना केवल समझ। और जितना जितना उसमें प्यार बढ़ता जाता है, श्रेष्ठ कर्म करने में हिम्मत आती है, निश्चय आता है, नशा चढ़ता है। इसलिए निश्चय बुद्धि से, यानी आत्मा दृढ़ संकल्प से जब कर्म करती है और निरहंकारी निर्विकारी स्वरूप से कर्म करती है, तो स्थिति कैसी है? एक रस है। स्थिति बनाने का मतलब, स्थिति बिगड़ी क्यों, अवस्था बिगड़ी क्यों? देह भान और अभिमान के कारण। तो पहला लेसन आत्मा का, किसने बिगाड़ी? किसी दूसरे के स्वभाव ने बिगाड़ी या मेरे किसी अवगुण या विकार ने बिगाड़ी? पर जितना जितना मेरे को आत्मिक बल बाबा से मिला, परखने की शक्ति होने के कारण, विकार को भी परखा और संबंध की शक्ति परमात्मा से होने के कारण श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति आई। मनुष्यों में शक्ति नहीं आती है क्योंकि संबंध नहीं है, हिम्मत नहीं है। तो परमात्मा फिर हम बच्चों को समझ भी देते हैं और ये भी कहते हैं, हिम्मत दे बच्चे मद दे बाप। एक एक कदम हिम्मत का उठाओ, हर कदम में पदम है। फिर हमारी बुद्धि में जिस प्रकार से बाबा हमको देखते हैं, हम अपने उस दिव्य स्वरूप को जितना जितना फ्यूचर को प्रेजेंट में लाते हैं, तो कर्म को श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति मिलती है। पास्ट को जब सामने लाते हैं तो हिम्मत हार लेते हैं। बाबा फ्यूचर सामने रख रहे हैं, फ्यूचर दिखा रहे हैं हमारा, और अभी भी आत्मा के जो ओरिजिनल गुण हैं, बाबा को तो वही नजर आते हैं। बाबा जब भी आते हैं क्या वर्णन करते हैं, कल कितनी सुंदर चित्र खींचा, कितना सितारे चमक रहे हैं, चेहरा चमक रहा है, मुस्करा रहा है, मुख भी वरदानों से भरा है, हाथ भी सुंदर श्रृंगारे हैं, कदम कदम में पदम की कमाई है। हम मोटे रूप से देखे तो हमको तो नहीं दिखाई पड़ती, हमारे आसपास कोई बैठे हैं, हम उनको देखते हैं, हमको तो साधारण लग रहे हैं। अंतर क्या है? वो प्रेम की वृत्ति में गुण ही नजर आते हैं, आत्मिक दृष्टि में गुणों की ही महिमा दिल से निकलती है। तो जितना जितना हमारा परमात्मा के साथ संबंध जुड़ता है, योग जुड़ता है, प्यार से याद करते हैं, तो मेहनत से परिवर्तन नहीं है, मदद की, बाबा के मदद से ऑटोमेटिकली परिवर्तन होता है, इसलिए आनंद मौज में चलते हैं। हाँ, हिम्मत जरूर चाहिए। पहले तो निराश हो गए थे ना, अभी बाबा ने फ्यूचर दिखा दिया, ये तुम बनने वाली हो। जब ये तेरी डिग्री है, ये तेरा स्टेटस है, तो हम हमारी स्थिति पहले पहले प्रभाव से, अपने प्रभाव से भी परे, क्योंकि प्रभाव अभाव डालता है। दूसरे के प्रभाव से भी हम अभाव में, अभाव का मतलब हमारी अपनी गुण में कमी आना शुरू होती है, और उस अभाव के कारण, प्रभाव के कारण हमारा स्वभाव बदल जाता है। तो स्वभाव को बदलने के स्वयं भाव तो आत्मिक भाव है ना। भावना यही है कि मुझे मनुष्य देवता बनना है, और भावना यही है कि मुझे हर एक को आत्मा देखना है। तो जो पहले लेसन है संगम युग के बाबा के ज्ञान है, उसको प्रैक्टिकल में हम जितना जितना अभ्यास करते जाते, गुणों को जितना जितना यूज करते जाते, गुण ग्राही बनते जाते, वृत्ति बदल गई तो गुण ग्रहण करेंगे ना। हंस बन करके सरस्वती माँ समान गुण मूरत बनते हैं, गुण ग्राही बनते हैं, फिर वो गुण ही शक्ति बन जाते हैं अपनी कमियों को भी खत्म करने के लिए, औरों की कमियों को भी खत्म करने के लिए। और वही जब गुण आ गए, शक्ति आ गई, तो बाकी हम क्या रहे, कर्म हमारे श्रेष्ठ हैं, फिर लक्ष्मी स्वरूप बनेंगे। फिर लड़ाई की जरूरत नहीं है, विकारों को जीतने की, रावण को जीतने की बात नहीं है। दुर्गा स्वरूप में श्री लक्ष्मी जी के हाथ में हथियार है, श्री दुर्गा जी के हाथ में हथियार है, बैलेंस है, पावरफुल वेपन्स भी हैं, तो दीवा भी है, कमल का फूल भी है, कलश भी है, वरदान का हाथ भी है। वो शक्तियों को यूज करने के लिए है, ताकि हमारे कर्म उन शक्तियों से, धीर्यता से और जेंटलनेस से दोनों बैलेंस रहे, शक्तिशाली भी हो और उसमें धैर्यता, प्रेम, मधुरता भी हो। जब दिव्यता और वो सत्यता साथ साथ है, ऑटोमेटिकली डिटैचमेंट आ जाती है, परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता, स्वस्थिति में स्थित रहते हैं। श्री लक्ष्मी जी के हाथ में कोई हथियार नहीं है, है कोई हथियार, कोई है या दूसरा अलंकार, गुण संपन्न बन गए, शक्ति संपन्न बन गए। रावण राज खत्म हो गया, तो रावण मरा कैसे, शक्ति के बल से। इसीलिए रावण के जलने से पहले, जलाने से पहले शक्तियां चाहिए, और वो शक्तियां संगम युग की ब्रह्मा द्वारा बाबा हमको देते हैं, ताकि प्रैक्टिकल में हमारे अपने विकार योग बल से भस्म हो, और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करके, ममा को फॉलो करके श्रेष्ठ कर्म करें। किसी मनुष्य आत्मा को नहीं, ब्रह्मा बाबा और ममा को फॉलो करके, मनुष्य आत्मा मनुष्य आत्मा को पावन अथवा सत्व प्रधान नहीं बना सकते। इसीलिए फिर जो शक्ति प्रैक्टिकल में है, वो स्वरूप बन जाता है, हम दिव्य गुणों का रूप बन के स्वस्थिति, परिस्थिति में पता चलती है कि मेरी परिस्थिति कैसी है। तो इस समय प्रकृति का प्रभाव, मनुष्यों की नेचर का प्रभाव, अपने आप की नेचर के प्रभाव से परे रहने का जो अभ्यास है, वो ईश्वरीय नशा और भविष्य देवपद का नशा और निश्चय, तो ऑटोमेटिकली अपनी सेवा के साथ साथ दूसरे की सेवा होगी। तो हमको अगर स्थिति ठीक बनानी है, तो ये बैलेंस रखना है। न्यारा भी बने प्यारा भी बने, जितना न्यारा उतना प्यारा, और उतना ही फिर जितना प्यारा उतना न्यारा। जितना बाबा से प्यार है उतनी हमारी सेवा स्वाभाविक है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। जितनी शक्ति है उतना हमारे अंदर स्वाभाविक रीति से अपनी कर्मद्रियों पर और मन पर जीत है। व्यर्थ चिंतन नहीं, प्रभु चिंतन चलता है। तो इसीलिए स्वस्थिति, परिस्थिति में भी स्वस्थिति बनी रहे तो स्वयं के स्वरूप की स्मृति, आत्मचिंतन, प्रभु चिंतन और भविष्य चिंतन, अथवा जो बाबा ने दिया है उसका अंदर अपने आप से वर्णन करते रहे तो मक्खन निकलेगा, फ्रेश रहेंगे। और उसको लगन से मक्खन को थोड़ा धैर्य और प्रेम की घी से और योग योगाएंगे तो मक्खन तो फिर भी थोड़ा समय के बाद क्या होता है, खराब हो जाता है। घी बनाए यानी शक्ति अपने अंदर लाएं, और शक्ति सिर्फ सारी अपने पास नहीं, घी बनाएंगे तो टोली बना देंगे तो सबको खिलाएंगे, सबकी सेवा हो जाएगी। इसीलिए साधन एक ही है, मन का मंथन, ज्ञान मंथन। बाबा जो हमको रोज मिल्क देते हैं वो मन की वृत्ति को ठीक करने के लिए, वातावरण को ठीक करने के लिए। दूध का मक्खन दूध को नहीं मथा जाता, दूध को दही बनावे। कैसे बनेगा? आर्ट ऑफ योगा, योगर्ट। जब जम गया वो दही, जब दिल बाबा की प्यार की बात जम गई हृदय में तो मंथन चलेगा, मक्खन निकलेगा। इसीलिए जितना जितना अपने को ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनाएंगे तो स्वयं की भी सेवा, दूसरों की भी सेवा श्रेष्ठ कर्म से होगी। तो जैसे आज बाबा ने कहा कि बाबा को फॉलो करेंगे तो और सारे फ्लो खत्म हो जाएंगे, पर सर्वशक्तिवान से हर प्रकार की शक्ति भरनी है। योग युक्त, शक्ति युक्त, युक्ति युक्त। ओम शांति।
कृष्ण माँ।